ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवत्सा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं सम्पद्य जहत्यजा मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयम् ध्यायेदजस्रं हरिं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद परब्रह्म परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर आत्मकल्याणार्थी समस्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं बहनों को हार्दिक अभिनंदित कर समय की पावनता की दृष्टि से सेवा में विनम्र निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। ज्यों ही इस हाल में पहली बार अभी प्रवेश हुआ तो श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज का एक पावन संस्मरण अकस्मात हृदय में जागृत हो गया। इसी प्रेमपुरी के इसी हाल में इसी मंच पर महाराज श्री विराजमान थे और किसी सज्जन ने, अब उनका शरीर नहीं है, उनका नाम था बच्चू भाई, बच्चू भाई ने यहां खड़े होकर एक प्रश्न किया कि महाराज श्री, हमारे एक मन में बार बार प्रश्न होता है कि भगवान ने ये अंतःकरण दिया, मन दिया, इसको इतना चंचल क्यों बनाया, हम हमारे मन को किस प्रकार से स्थिर कर सकें, इसका कोई सुगमतम उपाय बताइए। महाराज श्री को तो इन बातों में बड़ा उत्साह रहता था कि कोई कल्याण की बात पूछे, कोई अपने जीवन में साधना में कठिनता आए उसकी बात पूछे, तो महाराज श्री ने एक बात इतनी विलक्षण कही और वो केवल यहां यहीं कही और नई बात लगी, उसके बाद हमने दोबारा उस बात को नहीं सुना, दोबारा और ढंग से सुना था पर यहां जो महाराज श्री ने बात कही वो बहुत विचारने की गंभीरता से उसको अपने जीवन में लाने की थी। महाराज श्री ने कहा कि प्रकृति के जिस प्रवाह से शरीर के अंदर और क्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन है वो स्वाभाविक ही स्पंदनशील है, हृदय की धड़कन होती रहती है, स्वाभाविक रूप से जैसे नाड़ियां हैं इनमें गति होती है, चंचलता है, नेत्रों के जो पलक हैं वो क्षण क्षण में खुलते और बंद होते हैं, नाक से स्वाभाविक ही श्वास की प्रक्रिया चलती है, भोजन करते हैं तो स्वाभाविक ही वो भोजन शरीर में पचता है, स्वाभाविक ही शरीर में रक्त है वो विस्तृत होता है, स्वाभाविक ही मनुष्य के बाल कटाने पर भी वो उत्पन्न होते हैं, स्वाभाविक ही बाल्य अवस्था से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, स्वाभाविक ही वो बीमार होता है या स्वस्थ होता है, स्वस्थ होने के बाद बीमार हो जाता है या बीमार होने के बाद स्वस्थ हो जाता है, जैसी और प्रक्रियाएं बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत बात बताई थी कि नाखून काटते हैं फिर नाखून बढ़ जाते हैं, ये सब एक प्रकृति की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं के आधार पर भी मन है एक बात को छोड़ता है दूसरी बात को पकड़ता है, दूसरी बात को छोड़ता है तीसरी बात को पकड़ता है, तीसरी बात को छोड़ता है चौथी बात को पकड़ता है, ये प्रकृति के साथ मन का भी वैसा ही स्वभाव है। इस मन के स्वभाव को सहजता से देखना चाहिए और मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है ऐसा कहकर के साधना को कठिन नहीं बनाना चाहिए। ये प्राकृतिक प्रवाह है, मन के अंदर भी अनेक संस्कार है, अनादि काल के जन्मों के संस्कार हैं, उन संस्कारों से प्रकृति के वेग में वहां उथल पुथल होती है। कभी कभी मनुष्य को स्वप्न आता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, कभी कभी स्वप्न आता है कि मैं अगाध जल में जा रहा हूं, तो ये आकाश में कैसे उड़ेगा भाई बिना हवाई जहाज के, बिना जहाज के पानी के अंदर कैसे, पनडुब्बी के बिना पानी के अंदर कैसे जाएगा, पर स्वप्न आता है। तो वो स्वप्न ये बताता है कि किसी जन्म में हम लोग आकाश में उड़े थे, किसी जन्म में हम अगाध जल के अंदर चल रहे थे, न जाने कितने कितने शरीर आज तक हमको मिले, उन गतिशील शरीरों के माध्यम से हम लोग कितने कितने संस्कार इकट्ठे कर लिए, उनमें कभी कोई संस्कार आ गया कभी कोई संस्कार चला गया, फिर कभी कोई आ गया फिर कोई चला गया, ये एक प्रकृति का प्रवाह है। इसमें हमको इतना ही सावधान होना है कि हम इन स्फुरणाओं को देखो, एक तो होता है संकल्प, एक होता है स्फुरणा। स्फुरणा जो होती है वो मन में एक के बाद जो विचार होता है वो स्फुरणा कहलाती है, और संकल्प है कि उसमें किसी भी स्फुरणा में कोई राग या द्वेष पूर्वक आसक्ति पूर्वक कामना पूर्वक कोई उसमें संबंध जोड़ लेते हैं, वही स्फुरणा संकल्प के नाम से कहलाती है। जैसे कोई लड़का है किसी और जगह पैदा हुआ हुआ है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब पता चला कि ये हमारे ही किसी गोत्र का है, हमारे संतान नहीं है, तो हमने उसको गोद ले लिया। गोद लेने के बाद में वो हमारा ही लड़का दिखता है, हमने गोद ले लिया, हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, उस लड़के से पहले कोई संबंध नहीं, और जब उसकी लिखा पढ़ी हो गई, सब गोदनामा हो गया, तब वो लड़का हमारा कहलाने लगा। ऐसे ही मन में स्वाभाविक जो स्फुरणाएं होती थी, उन स्वाभाविक स्फुरणाओं में जहां हम हमारा लगाव करते हैं, जहां उन स्फुरणाओं को हमारे जीवन में एक सुख का साधन मानते हैं, जहां हम उन स्फुरणाओं के आधार पर कोई आसक्ति करते हैं, लगाव करते हैं, तो वही स्फुरणा एक संकल्प का रूप धारण कर लेती है और जब तक उस संकल्प की पूर्ति नहीं होती मनुष्य जो है वो इधर उधर घबराता रहता है, उसकी पूर्ति में लगा रहता है। तो स्फुरणाओं को हम लोग मन की चंचलता मानते हैं, उसकी बजाय संकल्पों तक स्फुरणाओं को न आने दें, ये हम लोगों की बात पर निर्भर करता है। हम लोग स्फुरणाओं को दबाना चाहते हैं पर स्फुरणाएं नहीं दबेंगी और स्फुरणाओं को दबाने से कोई लाभ भी नहीं होगा। महर्षि ने ये बात भी बताई थी कि जैसे गहरी नींद के अंदर हमारे कोई स्फुरणा नहीं होती है, कोई विचार नहीं आता, कोई स्वप्न भी नहीं, कोई जागृत भी नहीं, और गहरी नींद है, कोई उसमें विचार नहीं है, तो क्या वो हमारे कल्याण का साधन थोड़ी हो गया? उससे हमारा कल्याण थोड़े ही हो गया? स्फुरणाएं तो बंद हो गई, स्फुरणा तो नहीं हो रही है, परंतु उससे कोई हमारा उद्धार हो गया हो, कल्याण हो गया हो, हम कोई जीवन मुक्त हो गए हो, भगवत प्रेम हो गया हो, आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गहरी नींद आई, जगे, उठे, वापिस संसार में लगे। तो जैसे गहरी नींद में स्फुरणाओं का अवरोध होता है, ऐसे यदि मन की स्वाभाविक स्फुरणाओं को रोक भी लिया तो उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। बल्कि मन के अंदर दो बात है, एक तो मन के अंदर चंचलता है जिसके लिए अभी प्रश्न हुआ, और एक है मन के विकार। मन में कामना है, राग है, द्वेष है, अहंकार है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, ये है मन के विकार। तो हमारी भूल ये होती है कि हम मन के विकारों की तरफ तो विचार नहीं करते और मन की स्फुरणाओं की तरफ विचार करते हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसा कभी प्रश्न होता है कि भाई हमारे ये विकार हैं, ये विकार कैसे दूर हो, लौकिक इच्छाएं कैसे समाप्त हो, मानव शरीर हमको केवल परमात्मा की प्राप्ति का साधन मिला था, उसको हमने केवल संसार की प्राप्ति का साधन बना लिया, ये भूल हमारी कैसे मिटे? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के बिना हमको कभी शांति नहीं मिलेगी। जगत पहली बात तो किसी को मिलता ही नहीं, और किसी को मिल भी गया और मिलता भी है तो उसको कभी शांति मिलने वाली नहीं। कितने ही रुपए हो जाए, कितना ही मान हो जाए, कितना ही आदर हो जाए, कितना ही सत्कार हो जाए, और कितना ही शरीर स्वस्थ रह जाए, कितना ही अनुकूल परिवार मिल जाए, और कितने ही हमारे पास में सत्ताएं आ जाए, अधिकार आ जाए, कितना ही बड़प्पन आ जाए, अंतःकरण में शांति मिलने वाली नहीं है। बल्कि गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा कि जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना संसार हमारे अंदर मिलेगा और इसका लाभ हमको होगा उतना लोभ बढ़ेगा। ये लोभ बढ़ेगा, संसार का आकर्षण बढ़ेगा, संसार का महत्व बढ़ेगा और उसका अहंकार हमारे अंदर पैदा होगा। कितनी कितनी विकृतियां हमारे अंदर पैदा होंगी, हम कहाँ थे और कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वांशु जीवलोके, जीव का हमारा साक्षात संबंध भगवान से है, साक्षात संबंध भगवान से। हमारे और भगवान के बीच में कोई संबंध कराने वाला नहीं है और किसी कारण से हमारा और भगवान का संबंध नहीं है, साक्षात संबंध है। कोई संबंध नया नहीं बैठाया जाता, जैसे किसी कन्या का संबंध नए ढंग से बैठाया जाता है कि भाई अब इसका विवाह नहीं हुआ, अब इस कन्या का विवाह हुआ तो उसके लिए एक नए संबंध की प्रक्रिया बनानी पड़ी। यदि वो प्रक्रिया न बनाई जाए तो उस कन्या का विवाह न हो तो उसका पति भी नहीं हो, ऐसे उसका संबंध बनाना पड़ता है, परंतु जीव का और ईश्वर का संबंध बनाना नहीं पड़ता। जीव का और ईश्वर का स्वाभाविक संबंध है। भगवान ने कहा मम एव अंश है, ये केवल शुद्ध मेरा ही अंश है। ही बताने में तात्पर्य है किसी और का लेश मात्र भी नामो निशान नहीं है। कहीं जीव ऐसा न समझ ले कि मैं संसार में आया हूं तो कुछ तो संसार को लेकर हूं, बुद्धि आदि को लेकर हूं, मन आदि को लेकर हूं, इनके द्वारा अब मैं भगवान का हुआ हूं, ऐसा कहीं भूल से भी न समझ ले। इसलिए मम एव अंश है, निखालिस मेरा अंश है, कोई इसमें मेरे और जीव के बीच में दूसरी बात है ही नहीं। तो जब हम आपके इतने विशुद्ध अंश हैं तो फिर ये इतनी आपसे भूल क्यों हो गई हमारी, इतनी दुराव की बात क्यों हो गई, दूरी कैसे बढ़ गई, आप कहाँ हम कहाँ, ऐसे आपसे हम अपने को दूर मानते हैं, इसका क्या कारण है? तो साथ में कह दिया ममैवांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है, सनातन है ममैवांश है, लेकिन जीवभूत जीव हो गया। जीव हो गया का मतलब अपने को जीव मान लिया, उसने मान लिया। जैसे जंगल के अंदर एक शेरनी का बच्चा था, छोटा सा बच्चा, शेरनी ने जन्म दिया, उसको जन्म देने पर शेरनी मर गई, बच्चा एकदम अनाथ सा हो गया। अब उसके उस जंगल में कोई दूसरा शेर नहीं, कोई बात नहीं, कोई दूसरी शेरनी नहीं, तो उस जंगल के अंदर बहुत से गधे थे। उन गधों ने विचार किया कि ये यदि अपने को सिंह मान लेगा, इसको ज्ञान हो जाएगा, तब तो हम सबको मार खाएगा, तो अपने ये ऐसा करो इसको अपनी टोली में शामिल करो। तो टोली में शामिल कैसे करें? तो भाई एक मरा हुआ गधा था, उसकी खाल पड़ी थी सूखी हुई, तो और गधों ने कहा कि देखो तुम और हम एक हैं, आओ देखो हम तुमको बढ़िया एक कवच देते हैं, एक वो जो हमने पहन रखा है वो हम तुमको भी देते हैं। वो छोटा बच्चा, उसको तो अभी ज्ञान नहीं, तो जाकर कहेगा भाई दे दो, देखो हमने भी ऐसे पहन रखा है ना जो चमड़ा, वही चमड़ा हम तुमको दे देते हैं। तो मरा हुआ गधा उसकी चमड़ी उसमें उसको रख दिया यूं कि देखो ये हाथ ये है ना, ये तुम्हारे हाथ पैर, ये तुम्हारे पीछे के पैर, ये दोनों आगे के पैर, और इसके मुंह में तुम मुंह रख लो, और ये तुम्हारा कवच हो गया। और कोई पूछे, पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, और कोई पूछे तो तुम कौन हो, कह देना कि मैं गधा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर गधे का कवच है, मैं गधा हूं, कि ठीक है। अब उन गधों के बीच में ही रहता, गधों के बीच में खाता पीता दौड़ता करता, ऐसे करते करते थोड़ा बड़ा हो गया। बड़े हो जाने के बाद वहां उस गांव में, उस जंगल में एक कोई दूसरा सिंह आ गया, और सिंह की तो भाई स्वाभाविक रूप से ये बात होती है कि वो दहाड़ता है, सिंह दहाड़ता ही है, चाहे उसको पिंजरे में बंद कर दो, चाहे उसको खुला रखो, चाहे कुछ भी करो, वो दहाड़ता है। वो सिंह आया जंगल में, जोर से उसने दहाड़ लगाई, तो जब उस आगंतुक सिंह ने दहाड़ लगाई तो कुत्ते के रूप में जो सिंह था, वो सिंह का बच्चा था, वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसने भी दहाड़ लगाई, और दूसरे जितने गधे थे वो वहां पर उसी समय भग गए दहाड़ सुनते ही। आगंतुक सिंह की दहाड़ सुन करके सब गधों का टोला भगने लगा, लेकिन वो भगा नहीं, वो यूं ही खड़ा रहा, क्योंकि वो भी सिंह का ही बच्चा था, उसका स्वभाव थोड़ी छूट गया उसका, उसको अपने विषय में मालूम नहीं था, लेकिन स्वभाव उसका नहीं गया, वो डरा नहीं, वो भी खड़ा रहा वहां। तो उस नवागंतुक सिंह ने देखा कि ये गधा है, ये डरा नहीं मुझसे, क्या बात है, और तो सब डर के भग गए। तो फिर दोबारा और दहाड़ मारी, जब दोबारा दहाड़ मारी तो उसने भी दहाड़ मारी, तब कहा कि ये सिंह नहीं होना चाहिए, तो कोई और ही है। वो पास में गया, ये कौन हो तुम, ये तुम कौन हो, मैं तो सिंह हूं। भाई तुम सिंह हो सकते हो, मैं तो गधा हूं। कि तुम गधे हो? कि हां मैं गधा हूं। अरे भैया तू गधा नहीं है, देख तेरे और मेरे दांत एक जैसे, तेरे और मेरे मुंह एक जैसे, तेरी मेरी आवाज एक जैसी। पहले तो आवाज एक है, फिर कहा देर पंजा ला तेरा। तो उसने पंजा यूं किया अपना, तो उस नवागंतुक सिंह ने भी यूं पंजा कर दिया। किला पंजा मिला तो दोनों यूं पंजे मिलाए, तो देख तेरे मेरे एक जैसे नाखून, एक जैसे पंजा, एक जैसी ताकत, एक जैसी बोली, तू गधा कैसे हो सकता है? तो कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं, माँ मर गई थी और मुझे तो कुछ खोली में डाल दिया। आओ खोली में डाला, बाहर निकल खोली से। खोली से बाहर निकल करके देखा, देख तेरा रंग भी ऐसा ही, मेरा रंग भी ऐसा ही। अब वो सब पूरी बात बताया तो उसको बच्चे को ज्ञान हो गया कि अरे मैं गधा नहीं था, मैं तो सिंह था। वो गधा केवल उसने मान लिया अपनी मान्यता से। ऐसे ही हम साक्षात भगवान के अंश, भगवान के स्वरूप, भगवान के पास ही रहने वाले, भगवान का और हमारा अटूट संबंध, अविभाज्य संबंध हमारे में और भगवान में। लेकिन मान लिया हमने क्या, हम तो संसार के हैं, हम अमुक वर्ण के हैं, हम अमुक आश्रम के हैं, हम अमुक धंधे वाले हैं, हम अमुक गांव के हैं, अमुक गोत्र के हैं, और ये बस बस इतना परिचय मान के वहीं पर हम आकर रुक गए। वहीं आकर के हम अपने को समेट करके रख दिए। इसलिए भगवान ने बड़े दुखी मन से कहा गीता में कि ममई वांशो जीवलोके पर जीव भूत है, ये जीव हो गया मैं क्या करूं। व्याकरण की दृष्टि से जीव भूतय को जीवी भूतय बोलना चाहिए। अब व्याकरण जानने वाले जाने, कृभवस्त योगे संपद्य कृत्ये च्वी प्रत्यय, माने अजीव जीव संपद्यते दि जीवी भूत है, जीवी भूत होना चाहिए, पर जीव भूत है कहा, जीव भूत है। तो जीव भूत है क्यों कहा, कि वास्तव में ये परमात्मा का अंश है, जीव है नहीं, केवल अपनी मान्यता से, केवल अपने खुद के विचार से है। खुद ऐसा विचार करके अपने को जीव मान लिया और इस मान्यता के कारण से फंस गया। अब एक अपनी मान्यता यहां जगत के साथ में जोड़ ली, अब उसके साथ साथ में सब चीजों के साथ मान्यता हो जाएगी। जैसे कन्या का विवाह हुआ, एक पति के साथ में उसका फेरा हुआ, तो अब उस कन्या से पूछा जाएगी ये कौन है, कि ये हमारी सासू जी हैं। उनसे पूछा जाए कि जैसे पति के साथ संबंध हुआ वैसे सासू के साथ भी फेरे हुए थे क्या, अगर नहीं हुए, ऐसे ये कौन है कि हमारे ससुर हैं, ये कौन है कि हमारे नानी ससुर हैं, ये हमारे दादे ससुर हैं, ऐसे हमारे दादी सास है। माने एक पति के साथ संबंध होने पर पति का जहां जहां संबंध है वो सारा संबंध उस पर लागू हो गया। पति का भाई है वो उसको कहेगा हमारी भाभी जी हैं। उनको पूछा है आप भाभी जी, आप आपका और भाभी जी का संबंध भी मेरे भाई की स्त्री है, मेरी बड़े भाई की स्त्री है, मेरे लिए माँ के समान है, मेरी भाभी जी है। पर संबंध तो एक पुरुष के साथ, फेरा तो एक पुरुष के साथ हुआ था ना, अपने आप स्वाभाविक संबंध हो गए। ऐसे एक परमात्मा के साथ संबंध था, उस संबंध को हम भूल गए, और भूल करके सबसे पहला संबंध हमने संसार में किसके साथ जोड़ा, सबसे नजदीक कौन था, कि ये एक अहम तत्व है, अहम तत्व प्रकृति का सूक्ष्म अंश है, एक अहम तत्व। कोई मानते हैं बुद्धि तत्व, ये शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रीय विवेचन अलग है। चाहे अहम तत्व हो चाहे बुद्धि तत्व हो, संबंध हमारा यहां बना है, और इस संबंध का प्रभाव कहां दिखता है, मन के ऊपर दिखता है। मन बड़ा चंचल है। अब हम कह दें कि साहब यहां यदि कांच है तो कहें ये कांच बड़ा खराब है, क्यों, कि देखो हमारे बाल वाल कुछ भी नहीं बताए इसमें, हमको तो ऐसा बता दिया। तो कहे भाई तुम्हारे बाल है ही नहीं शरीर पर, तुम्हारे माथे पर इतने बाल है नहीं, जैसे और लोगों के घने बाल हुए हैं वैसे घने बाल है नहीं, बाल आपके छोटे हैं तो छोटे बाल आ रहे हैं। कि नहीं कांच ही खराब है, क्योंकि हमारे बाल ये नहीं बता रहा, यार बाल है ही नहीं तुम्हारे। ऐसे हमारा जगत के साथ संबंध का जो मूल कारण, या तो महतत्व है जिसको बुद्धि बोलते हैं, और या एक अहंकार अहं तत्व, इनके साथ लेकिन दिखता है वो मन में। और कहते हैं मन बड़ा खराब है और मन बड़ा चंचल है। इस मन से पहले हमारे पास दो चीजें और हैं, उनके ऊपर हमको गौर करना चाहिए, उनके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। उन दो चीजों में पहला या तो अहम है, माने अपने आप को हम कहां देख रहे हैं, कहां मान रहे हैं, अपनी मान्यता क्या है, ईश्वर संबंधी मान्यता है या जगत संबंधी मान्यता है। दो बातों पर विचार करना है। यदि ईश्वर संबंधी मान्यता है कि हम भगवान के हैं, तो स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति भगवान के भजन में होगी। इसलिए संतों ने महात्माओं ने कहा कि यदि जल्दी उद्धार करना है तो इस मन के पीछे मत पड़ो। जल्दी उद्धार करना है, कल्याण करना है, समय परिस्थिति और वातावरण को देखते हुए यदि संसार से भगना है, तो भाई सबसे पहला अपना अहंकार बदलिए। और ये मत मानिए कि मैं संसारी हूं, बल्कि ये मानना चाहिए हम भगवान के हैं। कितनी बढ़िया बात कही है हमारे रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण महाराज ने कि अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अभिमान भोलेपन में भी दूर नहीं होना चाहिए। लोग तो कहते अभिमान दूर हो, वो कहते मेरा अभिमान दूर नहीं होना चाहिए। कौन सा अभिमान? कि मैं सेवक, मैं तो भगवान का सेवक हूं और रघुपति पति मोरे, और रघुनाथ भगवान मेरे स्वामी हैं। मैं भगवान का सेवक और भगवान मेरे स्वामी, ये जो मैं और मेरापन है, ये मेरा छूटना नहीं चाहिए। तो कितनी विचित्र, कितनी गंभीर और कितनी सुस्पष्ट बात है कि भगवान ने हमको स्वाभाविक एक मैंपन दिया और एक मेरापन दिया, लेकिन उस मैंपन को हमने कहाँ लगा दिया, मेरापन को हमने कहाँ लगा दिया। हमको ये प्रेमपुरी आश्रम सत्संग करने के लिए, भगवत स्मरण के लिए मिला, माइक भी मिली है, यहाँ पर बैठने की जगह भी मिली है और कुर्सी भी मिली है, सब मिला है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग करने लगेंगे तो एक मिनट में अपने को यहाँ से भगो यहाँ से। हमने तो सत्संग के लिए आपको जगह दी, उन महापुरुषों ने ये जगह इसलिए बनाई कि लोग बैठ करके अध्यात्म का विचार करें। अब आपको माइक मिल गया, चाहे जैसे बोले, सिनेमा के गाने बोले, यहाँ पर नाटक की बात करें, तो भाई इसके लिए तो हमने आपको नहीं दिया था, आपको तो हमने ये इसलिए दिया था कि आप बैठ करके भगवान की बात करो। ऐसे ही भगवान ने हमको मैंपन दिया, भगवान ने हमको मेरापन दिया कि इस मैंपन को तुम हमारे में लगाना और इस ममता को मेरे में लगाना कि तुम मुझे अपना मानना, इसकी जगह न शरीर को अपना मानना, न कुटुंब को अपना मानना, न धनादि को अपना मानना, न कोई वस्तु आदि को अपना मानना, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि तेरी और मेरी एक जाति है, शरीर यही रहेगा और मैं और तू सदा रहेंगे। हंसौ आवाम, भागवत में लिखा कि हंसौ आवाम, ए जीवात्मा तुम और हम मानसरोवर के हंस हैं। भाई कोई छोटी मोटी जगह के नहीं, मानसरोवर के हंस। मानसरोवर वो नहीं जो अभी यहाँ चीन में है, मानसरोवर वो उस मानसरोवर से मतलब नहीं है। मानसरोवर माने मन रूपी जो सरोवर है, उसमें अपने दोनों साथ साथ रहने वाले थे, हंसौ आवाम। परंतु भाई तुमने अपनी शुक्लता को, स्वच्छता को, हंस होता है सफेद, एकदम सफेद, तुम अपनी सफेदी को भूल गए और तुम अपने गुण को भी भूल गए। गुण, गुण क्या है कि पानी का पानी और दूध को दूध, इन दोनों को अलग करके दूध पी ले वे, ये तुम्हारे में गुण था। तो तुम सफेदी को भी भूल गए और तुम अपने गुण को भी भूल गए और कहां रह गए, बस इधर उधर ताकने लग गए और वहां फल खाने लग गए, जो मानसरोवर के पास के वृक्ष हैं उन वृक्षों का फल खाने लगे। तो बताया कि इन दोनों हंसों में जो हंस वहां मानसरोवर के फल खाने लगा, सरोवर के पास के वृक्षों का फल खाने लगा, वो दुबला होता चला गया, दुबला खाने वाला। और अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान, उद्धव जी महाराज को बोलते हैं भागवत में भगवान कि अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान, और जिसने वो फल नहीं खाया, नहीं खाने से वो और मतवाला हो गया और मस्त हो गया, और मस्त होकर के हृष्ट पुष्ट हो गया। खाने से आदमी हृष्ट पुष्ट होता है कि नहीं खाने से होता है? परंतु ये एक ऐसे हंस है जिन हंसों में से जो खाता है, फल खाता है, वो तो दुबला पतला हो जाता है। अब संसार रूपी वृक्ष का फल क्या है? संसार रूपी वृक्ष का फल तो या तो सुख है, और संसार रूपी वृक्ष का फल या दुख है। जो सुख को खाएगा, दुख को खाएगा ना, वो कमजोर होता चला जाएगा। आज हमको संतों ने, महात्माओं ने जो बातें बताई, वो हमारे दिल में जल्दी उतरती क्यों नहीं है कि हम कमजोर हो गए? संसार का स्वाद लेते हुए, सुख लेते हुए, दुख पाते हुए यहां हम बहुत कमजोर हो गए। कमजोर हो जाने से वो ज्ञान है वो अंतःकरण में छन करके चला जाता है। कोई अज्ञान का हम लोग महत्व नहीं समझते, क्योंकि जिस मन में इनको धारण करना चाहिए उसको तो हमने सुख दुख का साधन बना लिया। सुख दुख का साधन बना लिया तो भाई अब हमारे सुख दुख हो गए तो अब ज्ञान की बात कहाँ ठहरेगी? कबीर, मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर भावे विषय कमाए। या तो विषय कमा सकते हैं या भक्ति कर सकते हैं, ये एक ही बात होगी, दो बात होगी नहीं, दो दांव पर कभी चढ़ा नहीं जाता। तो भगवान ने हमको अहंता दी और ममता दी सही रास्ते पर लगाने के लिए, और एक दी बुद्धि। देखो बुद्धि वाला मामला और भी विचित्र है, इसी स्टेज की बात है। ये मन के प्रसंग में महाराष्ट्री ने कहा कि लोग मन को तो लगाना चाहते हैं पर बुद्धि को भगवान में नहीं लगाते। बुद्धि को भगवान में लगाना क्या है महाराज? कि बुद्धि को लगाना है कि परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय करना, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव निश्चय करने का होता है, और बुद्धि का जो निश्चय होता है वही प्रकाशित होता है। समष्टि में जिसको महतत्व कहते हैं, व्यष्टि में वही बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व है वो अलग नहीं है, समष्टि वगैरह जो महतत्व है। और महतत्व के लिए भागवत में बड़ा अच्छा आया है कि विश्वम व्यंजन्स तमो नुदम, विश्वम व्यंजन व्यंजन्स तमो नुदम, अर्थात विश्व को प्रकाशित करने की जिसमें ताकत हो, और तमो नुदम और तमोगुण को जो नष्ट करता हो वो महतत्व कहलाता है। ऐसे जो ये महतत्व तो है सारे लोगों की बुद्धियां, और एक एक व्यक्ति के पास में जो बुद्धि है उस बुद्धि के अंदर ही भाई निर्णय करने की, विचार करने की, संसार की सारी शक्तियां उसमें है। अब उस बुद्धि से हम क्या निश्चय करते हैं? बुद्धि से तो निश्चय करते हैं धन कमाने का, बुद्धि से निश्चय करते हैं संसार का आराम लेने का, बुद्धि से निश्चय करते हैं संसार का सम्मान प्राप्त करने का, कि ये हमको सम्मान मिले, ये सुख मिले, ये सुविधा मिले, ये आराम मिले, ये सत्ता मिले, पद मिले, जो भी मिले। एक परमात्मा के अलावा जो कुछ हम लोग निश्चय करते हैं पहले बुद्धि में निश्चय करते हैं। अब बुद्धि के निश्चय को तो हम बदलते नहीं, और अब मन को सुधारने में चले हैं। भाई इस मन के अंदर आ तो बुद्धि से ही रहा है ना, बुद्धि से ही आ रहा है हमारे पास जो भी आ रहा है, तो उस बुद्धि को सुधारना चाहिए, अहमता को सुधारना चाहिए। सुधारने में लगे हम मन को, मन कभी भी नहीं सुधरेगा, अकाट्य सिद्धांत है। मन से पहले दो चीजें और हैं। जैसे किसी कार्यालय में जाए तो वहां बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी, वो तो रिश्वत खाए, वो तो कहे हम तो रिश्वत खाएंगे भाई, लाओ तुमको यदि काम कराना है तो इतना रुपया हमारे यहां धर दो। और वो अधिकारी कहे कि भाई कोई चपरासी कोई क्लर्क हमारे यहां पर रिश्वत नहीं खानी चाहिए। अरे तुम खुद रिश्वत खाते हो, तुम्हारा क्लर्क भी खाएगा, तुम्हारा चपरासी भी खाएगा, और भी तुम्हारे यहां कोई है कार्यकर्ता वो भी खाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम खा रहे हो इसलिए वो खाएंगे ही। ऐसे ही अहंकार के अंदर और बुद्धि के अंदर हमारा संसार के साथ गहरा संबंध बना हुआ है और हम केवल मन को सुधारना चाहते हो तो भाई उससे ये पार पड़ेगी नहीं। इतनी क्या बात करें, भगवान ने भी मन के विषय में बहुत थोड़ी बात कही है। भगवान को तो गीता में बहुत विस्तार से कहना चाहिए। अर्जुन ने 2 श्लोक में प्रश्न किया। देखो अर्जुन ने जैसे प्रश्न किए हैं, वो 2 अध्याय में जब पहला प्रश्न किया स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ से 1 श्लोक में किया, 3 अध्याय में प्रारंभ में 2 श्लोकों में प्रश्न किया पर वो उसके समर्थन के साथ किया, और फिर 3 अध्याय में काम संबंधी प्रश्न किया वो 1 श्लोक में किया, 4 अध्याय में भगवान से 1 श्लोक में प्रश्न किया अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम, 5 अध्याय में भी 1 श्लोक में प्रश्न किया कि संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगंच संससी, ऐसे करके 1-1 श्लोक में प्रश्न किया। लेकिन 6 अध्याय में जब मन की बात आई तो अर्जुन ने 2 श्लोक में प्रश्न किया, योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। ये जिस समता की बात आप करते हो, चाहे वो ध्यान की समता हो और चाहे वो प्रेम की समता हो और चाहे वो ज्ञान के दृष्टि से समता हो, लेकिन ये समता मन की चंचलता के स्थिर हुए बिना नहीं होगा। और ये मन इतना चंचल है कि वायु को पकड़े तो मन पकड़ में आए, वायु तो किसी के पकड़ में नहीं आती तो मन भी पकड़ में नहीं आता, और मन में पकड़ में आए बिना ये आपका ज्ञान नहीं ठहरता। अर्जुन ने अपनी दृष्टि से बड़ा विचित्र प्रश्न किया था, लेकिन भगवान ने क्या बोला कि हाँ हाँ ठीक बात है, चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़म, ये तो बात अर्जुन के समर्थन में कि मन बड़ा चंचल है प्रमाथी है और बलवान है और मजबूत भी है, भाई इसे संघर्ष करना बड़ा मुश्किल है, ये बातें तो कही। करना हो तो भाई अभ्यास है ना, तो कौन ते वैराग्य ने चक्रियते, या अभ्यास है या वैराग्य है, 2 बात बताई। या अभ्यास करो बार बार, जिस स्वरूप का आप जो है ध्यान करते हो उसको वापिस ले आओ, वापिस उसको अपने मन कहीं चला गया तो उसको ज्यादा हाई हुई करके मन को खराब बता करके और जो है धिकारने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मन को वापिस स्थिरता पर ले आओ। भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं हम, सशंक चक्र वाले भगवान, तो देख कहीं कोई दुकान की बात याद आ गई, परिवार की बात नहीं, वापिस ले आओ, फिर वापिस ले आओ, फिर वापिस ले आओ। एक तो ये अभ्यास है और एक संसार में राग, जहां मन वहीं जाता है जहां राग है या द्वेष है। महाराज जी ने बताया था कि रेलगाड़ी वहीं जाती है जहां पर वो चैले लगे हुए हैं, बिना चैले रेलगाड़ी नहीं जाती, रेलगाड़ी तो चैला है वहीं तक जाएगी। ऐसे ही मन में पकड़ वहीं होगी जहां या तो राग होगा या द्वेष होगा, तो राग और द्वेष का त्याग करो, वैराग्य करो तो मन बस में हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भगवान और थोड़ी सी बात बोलते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। अर्जुन तुम तो कहते हो कि मन बड़ा चंचल है, पर मे मति, जरा मेरा मत तो सुनो, मैं भी तो कुछ बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं इसमें से। मैं क्या, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप है, जब तक आप अपने आप को स्वयं मन और बुद्धि से मिला करके देखना बंद नहीं करोगे तब तक भैया ये योग प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है। इसलिए पहले अपने बुद्धि से निश्चय करो और अपने अहम से आप ये मानो कि मैं भगवान का हूं, अहंकार से तो ये मानो कि मैं भगवान का हूं, और और भाई इससे बुद्धि से ये निश्चय करो कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, भगवत प्राप्ति मेरा परम लक्ष्य है। इस प्रकार से अहंकार को और बुद्धि को लेकर के, और ये अहंकार और बुद्धि का भी कैसे होगा कि असंयतात्मना, अपने आप को यो संसार में मत जाने दो, अपने आप का जो स्वरूप है, मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, ये सब करण है हमारे। करण करण होता है, एक कर्ता होता है। हमने कोई यहां पर पत्र लिखा, किसी के नाम पत्र लिखा और उस पत्र में हमने लिख दिया कि साहब अमुक अमुक आदमी आपका है, वो अमुक जगह आदमी मर गया, ऐसे ही लिख दिया झूठे। अब हमने उसको गलत लिख दिया कि तुम्हारा आदमी कोई मर गया, और वो पत्र जाए साहब देखो ये हमारा आदमी मर गया लिख दिया, तो हमारा आदमी तो जीवित है। तो अब क्या करो कि अब जो है इसकी हम क्या देंगे कि साहब हम क्या करें, हमने लिखा तो हमने है, हमने तो कलम से लिखा है, तो साहब इस कलम को दंड दो, कलम को तोड़ दो। बोले कलम को क्यों है, कलम तो बिचारी तुम्हारे बाद में काम आती है, लिखा तो तुमने है, भाव तो तुम्हारे है ना, तुमने हमको चिढ़ाने के लिए, दुख देने के लिए और हमको प्रताड़ित करने के लिए ये तुमने अशुभ वाक्य ऐसे लिखे, तुम्हारे अमुक आदमी मर गया कि भाई जो है हमारा इससे क्या मतलब है, ये तो पेन ने लिख दिया, कलम ने लिख दिया, तो ये हमारी दलील चलेगी नहीं। कलम क्या होता है, कलम तो एक करण है, वहां पर कलम नहीं चलती, वहां पर तो भाई कर्ता होता है वो चलता है। आदमी का कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया अपनी कार से, साहब हो गया मेरा कोई इसमें कसूर नहीं, मैं मेरा गाड़ी में बैठा हूं और एक्सीडेंट हुआ है तो इस कार से हुआ है, तो कार का ड्राइविंग कौन का, ड्राइविंग मैं कर रहा था, लेकिन अमुक आदमी यदि मर गया मेरी गाड़ी से, मैंने नहीं मारा है, गाड़ी ने मारा है। कहे कि कैसी बात करते हो, गाड़ी को चलाने वाले तुम हो, तुम्हारे पर ही ये सब दोष लागू होगा कि तुमने उस मनुष्य को बचाया क्यों नहीं। ऐसे ही अंतःकरण है, ये मन है, ये करण है, बुद्धि है, ये करण है, अहंकार ये करण है। इन करणों को शुद्ध करने में हम लोग लगते हैं, करणों को हम ठीक करें, तो भाई कर्ता तो है बिगड़ा हुआ और कर्ण को हम ठीक करना चाहें कैसे पार पड़ेगी। कितना ही बढ़िया अक्षर हो और कितना ही सुंदर पेन हो, लेकिन लिखावट का जो आनंद मिलेगा या लिखावट का दुख होगा वो तो भाई लिखने वाले के भाव से होगा ना, वो तो लिखने वाले के भाव से होगा। भाव उसका है खराब तो भाई कितने ही बढ़िया पेन हो, कितने अच्छे अक्षर हो, मोती जैसे अक्षर हो, गोल मटोल अच्छे, परंतु उससे अच्छाई का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते तो हैं कि मन हमारा बस में हो जाए, भगवान कहते हैं असंयतात्मना योगे, आप खुद अपने आप में वश में नहीं है तो योगो दुष्प्राप है। इति मे मति, मेरे मत में यह योग दुष्प्राप है, दुष्प्राप है इति मे मति। वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः है, वश्यात्मना असंयतात्मना और ये वश्यात्मना तो यतता, आप अपने आप को वश में करो। अपने आप को वश में क्या, मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं, मेरे भगवान है, मेरा संसार में कोई नहीं है, ये अपने आप को अपने आप में वश में करना है। क्या भगवान तो दिखते नहीं, कि भाई दिखते तो बहुत सी बातें नहीं है, दिखती बहुत सी बातें नहीं, लेकिन मानते हैं हम बहुत सी बातें, केवल सुनकर के मानते हैं। कई देशों में हम नहीं गए, अमेरिका हम नहीं गए, इंग्लैंड हम नहीं गए, फ्रांस हम नहीं गए, मानते हैं ना कि नहीं मानते क्या, इंग्लैंड भले ही मत जाओ, बाजारों के अंदर वो जो है मिलता है नक्शा, तो ये फ्रांस है और ये अमेरिका है, ये ब्रिटेन है, ये अमुक देश है, ये अमुक देश है, ये अमुक देश है, यह ना नक्शे में आया इसका मतलब है। तो भाई नक्शे में आया जब आपने मान लिया, तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भगवान है, भगवान है। यदि नक्शों को मानते हो तो भाई शास्त्र नक्शा ही तो है और क्या है। और कह नहीं साहब अमुक आदमी गया था अमेरिका, वो कह रहा था कि अमेरिका ऐसा है, वाशिंगटन टन ऐसा है, अमुक गांव अमुक शहर ऐसा है, वो गया हुआ आदमी बोलता है, तो भाई ऐसे ही संत महात्मा बोलते हैं। संत महात्मा भी बोलते हैं कि भगवान है, तो लिखा हुआ मानोगे तो शास्त्र में लिखा हुआ है, और पहुंचवान की बात मानोगे तो भाई संत महात्मा आज तक हुए वो सत्य है। और तीसरी बात यह है, सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि संसार की तरफ तो हम चल करके देखा, हमको शांति नहीं मिली। तो शांति हमको नहीं मिली, भगवान के मिलने से शांति मिलती है। इसका मतलब इस गति, इस परिवर्तनशील जगह से तो हमको शांति मिलने वाली नहीं, ये तो एकदम पक्की बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। अब वो भगवान क्या है क्या नहीं, उसको हमें बाद में देखना है। पहले हमें ये देखना है कि भाई संसार के अंदर जैसे हम जीवन में जी रहे हैं, इस जीवन के जीने से हमको शांति नहीं मिलती, तो हमको हमारे विचार, हमको हमारे जो है ध्येय, हमको हमारे कर्तव्यों पर कुछ और ढंग से विचार करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा जब हम अपने जीवन के चौराहे पर खड़े होकर सावधान होंगे, ये जीवन का चौराहा है हो, जैसे अंतःकरण चार है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चौराहा है, चौराहा, इस चौराहे के बीच में खड़े होकर हमको देखना है कि भाई हमारा अहंकार क्या बोलता है, हमारी बुद्धि क्या है, हमारा मन किधर है और हमारा चित्त किधर है। चिंतन करने का नाम है चित्त, जिस वृत्ति से हम चिंतन करते हैं वो चित्त कहलाता है, जिस जब हम निश्चय करते हैं तो वो बुद्धि कहलाती, वो यह अंतःकरण एक ही है। अंतःकरण नाम से देखा जाए तो चार बोलते हैं, एक ही चीज, एक ही चीज का नाम, उसका रिपीटेशन अलग अलग हो, नाम अलग अलग हो गया। और जब हम किसी चीज को अपने में स्वीकार करते हैं तो वो होता है अहंकार, और जब मनन करते हैं तब उसका नाम होता है मन। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें मन तो सबसे नीचा हुआ। बोलते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार, सबसे छोटे का नाम पहले लिया, उससे अच्छा चित्त, उससे अच्छा बुद्धि, और उसके बाद अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन और बुद्धि चित्त और अहंकार, ये है बड़ो छोटो का क्रम। हम केवल मन को पढ़ ले, एक मन ठीक हो जाए, अरे भाई मन तो ठीक हो जाए पर बाकी तीन क्या हुआ। पातंजल योग दर्शन के अनुसार मन जब एकदम स्थिर हो जाता है तो वहां आता है कि कई प्रकार की विभूतियां पैदा होती हैं मन में, एक कई प्रकार की सिद्धियां आती हैं। भागवत में भी आया है व्युत्तिष्ठन्ति सिद्धयः, सिद्धयः व्युत्तिष्ठन्ति, सिद्धियां हैं वो प्रकट होती हैं। एक ध्येय के अंदर हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा तो भाई कई प्रकार की विलक्षणता आ जाएगी। जैसे जो है कंठ पिपासा निवृत्ति ही, कूर्पे कंठ पिपासा निवृत्ति ही, ये ना, ये गले, गले का जो छिद्र है इसमें दोनों ऐसे करके ध्यान यहां ही लगाएंगे तो भूख प्यास मिट जाएगी, भूख प्यास मिट जाती है, क्षुत पिपासा निवृत्ति। बरसों तक लोगों ने भोजन नहीं किया, ऐसे चंद्रे और सूर्य और चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम, जब ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष में आए उसको साथ यूं एकाग्र होकर चंद्रमा का यूं साक्षात ध्यान करें, फिर देखें ध्यान करें तो ताराव्यूह ज्ञानम, सब तारामंडल का ज्ञान हो जाएगा। सूर्य भवन कोशक ज्ञानम, सूर्य के प्रकाश में आंखों का जिस विधि से जो है मिलन होता है, यूं देखते रहो त्राटक ध्यान होता है, करते करते उसको कुछ वर्षों में पूरे भुवन कोश का ज्ञान होता है। अभी तो हमको ये पृथ्वी इतनी दिखती है, फिर उसको सूक्ष्म इस पृथ्वी का रूप दिखता है, सात समुद्र सात द्वीप पर जो भागवत वगैरह में आते हैं वो सब दिखने लग जाते हैं, पर फायदा क्या हुआ उससे। इसलिए संतों ने कहा और भागवत में भी भगवान ने कहा कि अंतराया ये ते सिद्धयः है, ये जो सिद्धियां हैं ये परमार्थ के काम में अंतराय हैं। कैसे अंतराय हैं, जैसे जगत में बहुत रुपया होता है वो उन्नति में बाधक होता है, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। ज्यादा धन होना, ज्यादा अनुकूलता होना, ज्यादा मान होना, ज्यादा सत्कार होना, ये सब क्या है? ज्यादा सत्ता होना ये अध्यात्म जीवन के पतन के सोपान है, गुड़ेगा नीचे पड़ेगा। वो जो ज्यादा धन होगा तो उसका धन में मोह ज्यादा होगा तो परमात्मा का प्रेम तो उतना कम ही होगा ना। जिस आदमी के पास में बहुत कम पैसा है उस आदमी को भगवान की बात जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन जिस आदमी के पास बहुत पैसा है, खर्चे से ज्यादा तो पैसा और काम से ज्यादा समय, ये होगा ना तो भाई उसका पतन होगा। इसलिए बताया कि ये जो सिद्धियां हैं ये किसी काम की नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने सिद्धियों का त्याग किया। परीक्षित ने कहा कि महाराज, ऋषभ देव जी महाराज के पास इतनी सिद्धियां थी, उन्होंने सिद्धियों का त्याग क्यों किया, सिद्धियों का उपयोग क्यों नहीं किया? कि नहीं भाई, सिद्धियों का उपयोग नहीं करने, क्योंकि सिद्धियों का उपयोग करेंगे तो वो सिद्धियां महत्ता के रूप में अंदर में दिखेंगी, और जहां भगवान, जहां संसार में किसी की भी महत्ता दिखी वो महत्ता भगवान की महत्ता को ढकने में ही काम आएगी। इसलिए जगत की महत्ता, जगत की सत्ता और जगत की प्रियता, ये तीन हमारे लिए बड़ी बड़ी भारी बाधक बताई है। ओहो अमुक चीज ऐसा हो गया, ओहो ऐसा हो गया, ये जो अंदर में ओहो होता है, आश्चर्य होता है, ये क्या, ये बाधा है। और एक जगत की प्रियता माने अच्छा लगना, ये बहुत बुरी बात है। संतों ने कहा है, भगवान से प्रार्थना की है, नरिया मन का दुखड़ा किसको कह सुना है, मेरे मन में हे भगवान एक दुख है, क्या करेंगे भाई? क्या दुख है? कि संसार के भोग हमको प्यारे लगते हैं। तो संसार के भोग प्यारे लगते हैं इसका अर्थ यह है उतने अंश में परमात्मा से तो प्रेम हट ही गया, उतने अंश में सिद्धियों की तरफ तो झुकाव हो ही गया। इस कारण से भाई ये बड़ी भारी बाधा बताई है, सिद्धियों का होना भी बाधा है। तो ये सिद्धियां तो होती है मन के एकाग्र होने से ही होती है। तो हम लोग मन को एकाग्र करके जिस लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं, वो अपेक्षा मन के एकाग्र होने से हमारे सिद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए हमको मन की चंचलता रूप दोष को दूर करने की बजाय मन के अंदर दिखाई देने वाले विकार हैं, उन विकारों को हम दूर करें, और हमारे बुद्धि और उन विकारों को दूर करने का साधन यह है कि हम हमारे अहंकार को बदलें और हम हमारे बुद्धि के निश्चय को बदलें, तब जाकर के ये मन की निर्विकारता आएगी। समाहितंकिम करणई, बताया कि जिसका परमात्मा का निश्चय हो गया, जिसको परमात्मा में प्रेम हो गया, उसका मन स्थिर रहे तो क्या और मन स्थिर न रहे तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, भागवत की बात है। इसलिए बताया कि साधन से निराश नहीं होवे और अपने अंदर इस बात का खूब अच्छी तरह से बल समझे कि भगवान ने हमको दिया ही मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा अंतिम और चरम और परम लक्ष्य है। इधर जो जो हमारे भावना जागृत होगी त्यों त्यों संसार अपने आप ही ये हमसे दूर होता चला जाएगा। ये तो बेचारा दूर ही हो रहा है, हम लोग जान जान करके पकड़ते हैं। तो ये सब बात अपनी सुधर सकती है, ऐसा हम लोग विचार करके चले। तो ये बात क्यों ध्यान में आई, कोई विचार नहीं था कि इस विषय पर ऐसा बोलेंगे, सामने तो गीता थी, गीता के अनुसार कुछ बोलने के भाव थे, अंदर घुसते ही वो दृश्य याद आया कि इस जो है पंडाल इसी भवन में महाराज श्री ने एक ऐसी विलक्षण बात कही थी, वो विलक्षण वो दृश्य, और वो भी याद आया, वो समय भी कौन सा था, किन के पूछने पर हुआ, वो सब दृश्य याद आया कि भाई सत्संग कितना दुर्लभ है। साथ में यही विचार आया कैसे अच्छे अच्छे महापुरुष, उनके कितने बड़े भाव, तो वही वो भाव अपने लोग जीवन में काम में ले सकें और अपना कल्याण कर सकें, यही हमारा सत प्रयास होना चाहिए और भगवान से इसी के लिए बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। राम भगवान की कृपा से ये आप लोगों के बीच सत्संग करने का ये सौभाग्य।